खुदावन के जलाली और मुकद्दस नाम में आप सबकी सलामती हो। उम्मीद है कि आप सब खुदावन में ठीक हैं, और आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि हम हर रोज़ आपके लिए दुआ करते हैं, खुदावन की सलामती आपके लिए चाहते हैं, और खुदावन से यही दुआ करते हैं खुदावन आपके ईमान को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करे। और दुआ करते हैं कि खुदावन इस कलीसिया के नौजवान बेटों बेटियों की अकलों को रोशन करे, ताकि हर एक बेटी और बेटा अपनी ज़िंदगी में खुदावन खुदा के मकसद को जाने। तो खुदावन का इत्मीनान आप सबके साथ हो। इससे पहले कि हम खुदावन के ज़िंदगी बख्श कलाम में से सीखें, आए हम सब खुदा के हजूर झुकें और उसकी हिकमत और दुनाई मांगें, क्योंकि उसकी हिकमत और दुनाई के बगैर हम कुछ भी नहीं। तो आए हम अपने पूरे दिल से पूरी तवज्जो से खुदावन से बात करें, और अगर किसी किस्म का गुनाह, फिक्र, परेशानी, तकब्बर, हसद हमारे जहनों, सोचों, ख्यालों में है, खुदावन से कहेंगे कि तू उसे दूर कर, ताकि रूह और सच्चाई से तेरी परस्तिश करने वाले बने। आए हम दुआ करें। खुदा बाप, आसमान और ज़मीन के खालक और मालक यसु मसीह में हमारे आसमानी बाप, तेरे शुक्रगुजार हैं तेरे पाक रूह की कुदरत के लिए, जो हम सब के लिए मौसर है, जो हम सब के लिए मौजूद है, जो हम सब के लिए दस्तियाब है। आज अपने कलाम के गहरे सच्चाइयों को, सच को सीखने की, समझने की हमें कुव्वत और ताकत दे, और यहाँ तक ही नहीं खुदा बाप, हमारे दिलों में ख्वाहिश पैदा करके हम इस अंधेरी और टूटी हुई और गुमशुदा दुनिया में, जिसमें लोग उम्मीद के लिए जवाब ढूंढ रहे हैं, जवाब बने, ना उम्मीदों के लिए हौसला, बीमारों के लिए तसल्ली और अंधों के लिए रोशनी, और हम सबको शमा की तरह, नूर की तरह, जैसे तूने कहा कि तुम दुनिया का नूर हो, चमकना सिखा। यीशु मसीह के नाम में आज हम सबके साथ हो, सारे इंटरनेट पर, सारे कलोनी पर, मुल्क पाकिस्तान पर तेरा अबर छाया रहे। यीशु मसीह के नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन। तो मेरे साथ निकालें जो बहन भाई कलामे खुदा पढ़ सकते हैं, जैसा कि हमने पिछले दिनों में सीखा कि खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से हम सबको खुदा तक पहुंचने का रास्ता हासिल हुआ। किसी ना किसी को जाने की ज़रूरत है। तो आज हम इफिसियों उसका दो बाप उसकी 18वीं आयत को पढ़ेंगे, इसमें से सीखेंगे, लेकिन आपके लिए मैं 13वीं आयत से पढ़ूंगा। इफिसियों दो बाप उसकी 13 आयत से 18वीं आयत तक, और उम्मीद है कि आज हम 18वीं आयत को मुकम्मल करेंगे। पालूस रसूल लिखता है, मगर तुम जो पहले दूर थे, अब मसीह यसु में मसीह के खून के सबब से नज़दीक हो गए हो। हमने यहाँ पर सीखा यसु मसीह के वसीला से इंसान और खुदा का मलाप हुआ, यानी कि सलीब पर नजात के काम को यसु मसीह ने मुकम्मल किया। और इंसान जो खुदा से दूर था, इंसान जो गुनाह के अंधेरों में खोया हुआ था, गुमशुदा था, यसु मसीह ने आकर कहा कि मैं इब्ने आदम, आसमान और ज़मीन का खालक और मालिक, इंसान के रूप में, बर्रे की सूरत में इस ज़मीन पर आया हूँ, चरवाहे की सूरत में इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और नजात देने आया है। और 14वीं आयत में, क्योंकि वही हमारी सुलह है, जिसने दोनों को एक कर लिया और जुदाई की दीवार को जो बीच में थी ढा दी। खुदावंद खुदावंद यसु मसीह वो दरमियानी बना, जिसने दीवार जो गुनाह की दीवार थी, शक की दीवार थी, नापाक नापाकी की दीवार थी, खुदावंद यसु मसीह ने उस दीवार को ढा दिया और हमारा बाप के साथ क्या करा दिया, मेल कला दिया, जुदाई को ख़त्म करा के उससे सुलह करवा दी। जो दुश्मनी थी, उस दुश्मनी को यसु मसीह ने ख़त्म कर दिया। किस तरह? अपने खून को बहाकर, अपने आप को देकर। और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये सब ऐसा होता है कि जब किसी दो ख़ानदानों में लड़ाई झगड़ा होता है, तो तीसरा बंदा आकर उनका जो मुद्दई या उनका जो क्या कहते हैं दरमियानी बनता है, सुलह करवाने वाला, तो उन खानदानों की सुलह हो जाती है। वैसे ही इंसान और खुदा के दरमियान जो दुश्मनी थी, रूहानी मौत थी, रूहानी रुकावट थी, आदम और गुना, आदम के गुनाह के बायस सब खुदा के जलाल से महरूम और जुदा और दूर थे, तो यसु मसीह ने क्या करवा दी, सुलह करवा दी। अब 15वीं आयत में लिखा है, चुनाचे उसने अपने जिस्म के जरिया से दुश्मनी यानी वो शरीयत जिसके हुक्म जाब्तों के तौर पर थे माकूफ कर दी, ताकि दोनों से अपने आप में एक नया इंसान पैदा करके सुलह करा दे। हम गुनाह की हालत में मुर्दा थे, हम गुनाह के गुलाम थे, गुनाह की मंडी में बिके हुए थे, तो खुदावंद यीशु मसीह ने उन तमाम रस्मों को, रिवाजों को, हुक्मों को जो इंसान कभी भी पूरा नहीं कर सकता था, उन तमाम तकाजों को जो शरीयत करती थी के बजा बगैर रासबाजी के कोई भी खुदा को पसंद नहीं आ सकता, उन तमाम हुक्मों को जिसे इंसान पूरा नहीं कर सकता कभी भी, क्योंकि शरीयत की किताब में लिखा है, पालूस रसूल इस बात के बारे में कहता है कि अगर कोई सारी शरीयत पर अमल करे और एक हुक्म को तोड़ दे तो वो सारी शरीयत में क्या ठहरता है, उसका तोड़ने वाला और मुजरम ठहरता है। तो यीशु मसीह ने उस सारे शरीयत के तकाजों को, हुक्मों को, उन रस्मों रिवाजों को दूर करके हमें नई पैदाइश दी, नई पैदाइश, नया इंसान बनाया। अगर आज आपके दरमियान कोई ऐसा बेटी बेटा मौजूद है, ऐसा कोई भी मौजूद है जिसने पहले यीशु मसीह को कबूल नहीं किया, जैसे उस रात जब निकुदीमस यीशु मसीह के पास आया तो उसने कहा कि मैं क्या करूं कि निजात पाऊं, यीशु मसीह ने कहा तुम्हें नए सिरे से पैदा होने की जरूरत है। यीशु मसीह ने जब ये बात कही तो निकुदीमस सोच रहा था कि शायद उसे अपनी माँ के पेट में दोबारा जाने की जरूरत है, दोबारा से पैदा होने की जरूरत है, लेकिन यीशु मसीह वहां पर बात कर रहे थे नए सिरे से मुराद तुम्हें अपने सोचने का तरीका कार बदलने की जरूरत है, और वो ये है कि मैं खुदावंद खुदा हूं, मुझ पर यकीन रखने से तुम नए सिरे से पैदा होगे। और क्या लिखा है दूसरा करंथियों 5 बाब उसकी 17 आयत में, बस अगर कोई मसीह यसु में है जिसने यसु मसीह को कबूल किया वो नया मखलूक है, पुरानी चीजें जाती रही देखो वो नई हो गई। अगर आप में से कभी किसी ने यीशु मसीह को कबूल नहीं किया शख्सी तौर पर कि खुदावन तू मेरे गुनाहों के लिए मुआ, इसलिए मैं यकीन करता हूँ करती हूँ, तो आप ये फैसला कर सकते हैं, कर सकती हैं, तो वो आपको दोजख की आग से बचाने की कुव्वत और ताकत रखता है, क्योंकि लिखा है खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि यीशु मसीह अपना बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, यानी कि दोजख में ना जाए बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। सिर्फ ईमान रखने की जरूरत है। अगर आज सब यहाँ पर ईमानदार मौजूद हैं तो खुदावंद की तारीफ हो, अगर नहीं तो हम नए इंसान बन सकते हैं, हमारी दुश्मनी खुदा से खत्म हो सकती है और वो तमाम जुदाई की दीवार को यीशु मसीह ने ढाया है, सिर्फ यकीन करने की जरूरत है। और 16वीं आयत में पालूस कहता है, और सलीब पर दुश्मनी को मिटाकर और उसके सबब से दोनों को एक तन बनाकर खुदा से मिलाया। खुदावंद यीशु मसीह के खानदान में ना कोई यहूदी है, ना कोई यूनानी है, ना कोई गुलाम है, ना कोई आजाद है, सबको खुदा के बेटे और बेटियां होने का क्या मिलता है, नाम मिलता है, हक मिलता है सबको। खुदा वहां पर ये नहीं कहता कि तुम काले हो और तुम सफेद हो, तुम्हारा कद छोटा है तुम्हारा कद बड़ा है, तुम फलां कबीले से हो इसलिए तुम फलां कबीले के साथ खा पी नहीं सकते। ये दुनिया की सोच है, दुनिया तफरके पैदा करती है, दुनिया में फिरके पैदा होते हैं, और फिरके जो पैदा किए जाते हैं वो बहुत दफा अबलीस की सोच है, शैतान का काम है जुदाई पैदा करना, मसीह का काम है सुलह, खुदा के साथ सुलह करवाना। दुश्मनी को दूर करके एक बनाना। सो हम मसीह में सब, जो कोई भी कहीं भी है, खा कोई अफ्रीका में है, इंडिया में है, हिंदुस्तान में है, चोलिस्तान में है, अफगानिस्तान में है, पाकिस्तान में है, कहीं भी कोई रहता है, बेटी है, बेटा है, नौजवान बुजुर्ग है, अगर वो यीशु मसीह पर ईमान रखता या रखती है तो वो आपका खानदान है। ऐसा खानदान खूनी रिश्ते से भी ज्यादा अजीज, ज्यादा उम्दा रिश्ता, ऐसा रिश्ता जो बेमिसाली है, ऐसा रिश्ता जो खुदा की तरफ से मुकरर किया गया यीशु मसीह ने। और 17वीं आयत में लिखा है, और उसने आकर, किसने आकर? खुदावंद यीशु मसीह ने, तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो नजदीक थे, यहूदी और गैर यहूदी, उन सबको जो दूर थे, दोनों को सुलह की खुशखबरी दी। आपको कहीं ना कहीं से खुशखबरी का पैगाम मिला, हमारे बाप दादा ने कहीं ना कहीं से सीखा, जैसे तारीख गवाह है कि तोमा रसूल इंडिया में और फिर एशिया के इस इलाका में आया, और उसके वसीला से इंडिया के लोगों ने यीशु मसीह की खुशखबरी को सुना, कबूल किया और बहुत से ईमान लाए। आपने कहीं ना कहीं से यीशु मसीह के पैगाम को सुना, और हो सकता है कि आज सुन रहे हैं, हो सकता है मसीही, हम सब मसीही कानूनी में, मसीही खानदानों में पैदा हुए, लेकिन हमें ईमान लाने की ज़रूरत है। जैसे हम बच्चे को मखसूसियत के लिए बपतिस्मा करवाते हैं, वैसे ही हमें यीशु मसीह को कबूल करने की ज़रूरत है। बपतिस्मा एक मखसूसियत है, वो हमें निजात नहीं दिलाता, ये सिर्फ एक निशान है। अलहदा करना, उसके बाद यीशु मसीह के बारे में बताना, खुशखबरी देना, तो सुलह की खुशखबरी दी गई। और आज हम 18वीं आयत से सीखेंगे कि जब हमने यीशु मसीह को कबूल कर लिया, पालूस कहता है, जब हमारे और खुदा के दरमियान में जो जुदाई और दुश्मनी की दीवार थी वो ढा दी गई, जब हम खुदा के बेटे और बेटियां बन गए हैं, अब हमें क्या हासिल है? ऐसा अजाज, ऐसा रिश्ता, याद दिलाना चाहता हूँ, मसीहत मजहब नहीं बल्कि खुदा के साथ रिश्ता है। ऐसा रिश्ता जो किसी और मजहब में नहीं पाया जाता, ऐसी मोहब्बत जो किसी और जगह से नहीं मिल सकती, और ऐसा नजात दहिंदा जो अपने आप को कुर्बान करता है, वादों में सच्चा है, तन्हाइयों में हर जगह मौजूद है, फिक्रों को दूर करने की कुदरत रखता है, अंधों को बिनाई देने की ताकत रखता है, जिसने कहा कि मैं खुदावन का मखसूस किया हुआ, मसा किया हुआ मसीह हूँ, और मैं जमीन पर इसीलिए आया कि अंधों को बनाई, कुचले हुओं को रहाई, और कैदियों को आज़ादी, और बीमारों को शिफा, और उन तमाम लोगों को जो गुनाह की भीड़ में खोए हुए हैं, आज़ादी की राह दिखाऊं, उनको खुदा तक ले जाने का रास्ता बताऊं। इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, यूहन्ना 14:6 उसकी 6 आयत में, कि राह और हक और जिंदगी मैं हूं, कोई भी मेरे बगैर खुदा बाप के पास नहीं जा सकता। और यही बात पालूस रसूल आपको, मुझे और हर एक ईमानदार को याद दिलाना चाहता है। उस वक्त के कलीसिया को, इफ़सस में जो रहते थे, उनको लिखते हुए कहता है कि तुमने यीशु मसीह को कबूल किया, जुदाई दूर हो गई, तुम उसके नज़दीक आ गए, उसने सलीब पर तुम्हारे गुनाहों का कफारा दे दिया और तुम्हें गुनाह की मंडी से खरीद लिया, तुम्हारी और खुदा के दरमियान अब सुलह है। और उस सुलह के बायस क्या हुआ? 18वीं आयत को गौर से सुने, अगर पढ़ सकते हैं तो मेरे साथ पढ़ें, क्योंकि उसी के वसीला से हम दोनों की एक ही रूह में बाप के पास रसाई होती है। यहां पर खुदा का बंदा पालूस क्या कह रहा है सादा लफ्जों में, कि अब तुम यीशु मसीह के वसीला से, उसी का लफ्ज किसके लिए इस्तेमाल किया है, खुदा यीशु मसीह के लिए कहता है कि अब यीशु मसीह ने आकर ना कि सिर्फ तुम्हें निजात दी है, ना कि सिर्फ तुम्हें खुशखबरी की منادی کی ہے، نہ کہ اس کے وسیلہ سے تمہیں رہائی ملتی ہے، بلکہ اس پر ایمان لانے کے باعث اب تمہیں وہ کارڈ، وہ اختیار حاصل ہے کہ تم خدا کے پاس جا سکتے ہو. اور یہی بات پالوس کہہ رہا ہے، کیونکہ یسوع کے وسیلہ سے ہم دونوں کو، یعنی کہ ہر ایک قبیلے، ہر ایک زبان بولنے والے کو، کسی بھی ملک، کسی بھی شہر، کسی بھی قبیلے، کسی بھی رنگ، کسی بھی زبان سے اس کا تعلق ہو، بیٹی ہو، بیٹا ہو، بزرگ ہو، بچہ ہو، ہم دونوں کو، یہودی ہو، یونانی ہو، عربی ہو، ہندو ہو، کوئی بھی ہو، ہم دونوں کو ایک ہی روح میں، کہتا ہے یسوع مسیح کے وسیلہ سے، خدا پاک روح کے وسیلہ سے باپ کے پاس جانے کی رسائی حاصل ہے، باپ کے پاس جا سکتے ہو. اور یہ بات پالوس رسول یاد دلانا چاہتا ہے. آگے چل کر ہم دیکھیں گے کہ اور کیا کچھ ہمیں مسیح میں حاصل ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ اب تم، پہلے تم ان دیوی دیوتاؤں کی عبادت کرتے تھے جن کے پاس تمہیں بہت سے چڑواہوں کے ساتھ، بہت سے بیل اور دوسری چیزوں کے ساتھ اس کے پاس جانا پڑتا تھا کہ ان کو خوش کریں، لیکن اب تم یسوع مسیح کے وسیلہ سے، جو خدا کا برہ ہے جس نے تمہارے اور دنیا کے گناہوں کو دور کر دیا، اس برے کے لہو میں چھپتے ہوئے روح القدس کی قدرت میں، جہاں کہیں بھی ہو، گھر میں ہو، چھت پر ہو، مکان پر ہو، قید خانہ میں ہو، بازار میں ہو، ٹرین میں ہو، جہاز میں ہو، جہاں کہیں بھی ہو، گرجا گھر میں ہو، اٹھتے بیٹھتے، چار پائی کے اوپر، کھانا بناتے، کہیں بھی تم یسوع مسیح کے نام سے روح القدس کی قدرت میں خدا باپ سے بات کر سکتے ہو. یہ بہت انوکھی بات ہے، کوئی اور اس طرح کا اختیار نہیں دیتا سوائے یسوع مسیح کے، سوائے مسیحت کے. اس لیے ہم سب کو ہر روز خداوند کا شکر کرنے کی ضرورت ہے. کہتا ہے کہ ایک ہی روح میں، خدا پاک روح، باپ کے پاس آنے، باپ کے پاس رسائی ہوتی ہے. اس لیے آپ جہاں کہیں بھی ہو، عبرانیوں 4:16 میں لکھا ہے، کیا لکھا ہے میں آپ کے لیے پڑھوں گا، 14 سے، پس جب ہمارا ایک ایسا بڑا سردار کاہن ہے، یسوع مسیح کے بارے میں بات ہو رہی ہے، جو آسمانوں سے گزر گیا، یعنی خدا کا بیٹا یسوع، تو آؤ ہم اپنے اقرار پر قائم رہیں. خدا کا بندہ، عبرانیوں کا مصنف کہتا ہے، یسوع مسیح جو خدا کا بیٹا ہے، اس پر قائم رہیں، اس میں یقین رکھیں، کیونکہ ہمارا ایسا سردار کاہن نہیں جو ہماری کمزوریوں میں ہمارا مددگار نہ ہو سکے، بلکہ وہ سب باتوں میں ہماری طرح آزمایا گیا تو بھی بے گناہ رہا. یسوع مسیح بے گناہ برہ ہے، اور وہ آزمایا گیا آپ کی طرح، اس لیے وہ ایسا نہیں کہ کہے گا کہ میں آپ کی مدد نہیں کر سکتا، میرے پاس فرصت نہیں، کام نہیں، میں سو رہا ہوں، میں یہ کر رہا ہوں، وہ کر رہا ہوں. جب بھی اسے پکاریں گے تو وہ آپ کی مدد کے لیے آ جائے گا، وہ آپ کی مدد کے لیے تیار ہوگا، جیسے زبور 121 میں لکھا ہوا ہے، اکھیاں چکنا ہاں میں ول پہاڑا، مدد لئی میں کس نو پکارا، میری مدد نو رب آپے آیا، جس نے دھرتی آسماں بنایا، تیرا راکھا نہ کدی انگلاوے، تیرے رب نو نیندر نہ آوے. اسرائیلاں دیاں رکھ دا تاڑا، وہی خدا آپ کا خدا ہے، جو نہ سوتا ہے، نہ اونگتا ہے، نہ تھکتا ہے، اور نہ ہی یہ کہتا ہے کہ میرے پاس وقت نہیں، وہ مدد کر سکتا ہے. تو خدا کا بندہ، عبرانیوں کا خط لکھنے والا، کہتا ہے 16 میں، پس آؤ، اب جبکہ ہمیں خدا پاس، خدا کے پاس جانے کا اختیار حاصل ہے، دعا کے وسیلہ سے بات کرنے کا اختیار حاصل ہے، کہتا ہے پس آؤ ہم فضل کے تخت کے پاس دلیری سے چلیں. جیسے بادشاہ کے تخت کے سامنے لوگ ڈرتے ہوئے، کانپتے ہوئے جاتے ہیں، وہ کہتا ہے دلیری سے، پورے احتیاط، پورے اعتقاد کے ساتھ، یقین کے ساتھ کہ ہمارا خدا ہماری دعا سنتا ہے، اور کوئی اور دوسرا خدا نہیں جو دعا سن سکے، اور جو کہے کہ جب تم میری حضوری میں آؤ تو کانپتے ہوئے آؤ. صرف یسوع مسیح کا باپ آسمانی، ہمارا خدا، ان خدا باپ آسمانی کہتا ہے मेरे पास मेरे बच्चों बड़ी दलेरी के साथ, यकीन के साथ, पूरे ईमान के साथ आओ, ताकि हम पर रहम हो और वो फजल हासिल करें जो ज़रूरत के वक्त हमारी मदद कर सकता है। मुझे नहीं पता आज आपकी क्या ज़रूरत है, मुझे नहीं पता आज आपकी कौन सी आजमाइश है, कौन सा आपको दुख है, कौन सी आपकी ख्वाहिश है। ज़बूर 37 उसकी 4 आयत में लिखा है, खुदावन में मसरूर रहो, वो तुम्हारे दिल की मुरादों को पूरा करेगा। उसे पुकारें, आए हम दुआ करें, इस बरकत को ज़ाया ना करें, इस बरकत को दूसरों तक पहुंचाएं, अपने बच्चों को हर रोज़ बताएं, बजाय बच्चों को कोई और बात सिखाने के, यीशु मसीह से बात करो, खुदा बाप से बात करो, वो तुम्हारा बाप है, वो तुम्हारी तमाम फिक्रों से वाकिफ है, वो तुम्हें हर चीज़ मुहैया करेगा और आपकी कदर उस 50 पैसे की चिड़ियों से कहीं ज़्यादा है। और खुदा कहता है कि मेरी मर्जी के बगैर एक भी चिड़ी ज़मीन पर नहीं गिरती, तो तुम्हारी कदर तो उन चिड़ियों से भी कहीं ज़्यादा है। इसलिए खुदा से बात करना शुरू कीजिए, उसे अपना बाप जानकर, उसे अपना खालक और मालक जानते हुए उससे बात करें कि हम तेरे बेटे और बेटियां तेरे हजूर हाजिर हैं, खुदा उन खुदा के हजूर चुके हैं, दुआ करें। खुदा बाप आज के कलाम के वसीला से हम सबको दलेरी दे, ताकि हम पूरी दलेरी के साथ तेरे हजूर आएँ। यीशु मसीह के नाम में ये दुआ मांगते हैं और आज के कलाम के वसीला से सबको दलेरी की रूह बख्श। यीशु के नाम में ये दुआ मांगता हूँ, आमीन।